तीसरे स्कंद अध्याय 33वां और श्लोक नंबर 15। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रजापते कदम्बस्य तपोयोग विद्यत्वितं सवग्राहस्थ्यं अनोप्यम्। ट्रांसलेशन और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रजापति कदम का घर तथा उनकी गृहस्थी, उनकी तपस्या तथा योग के बल पर इस प्रकार समृद्ध थी कि उनके ऐश्वर्य से आकाश में विमान से यात्रा करने वाले लोग भी ईर्ष्या करते थे। तात्पर्य, इस श्लोक में आया कथन कि कदम मुनि की गृहस्थी को देखकर बाह्य अंतरिक्ष के पुरुष भी ईर्ष्या करते थे, वस्तुतः स्वर्ग के निवासियों के लिए है। उनके विमान आजकल के विमानों जैसे नहीं होते थे, जो केवल एक देश से दूसरे देश तक उड़ान भरते हैं। अब तो उनके विमान एक लोक से दूसरे तक यात्रा करने में समर्थ थे। श्रीमद् भागवतम में ऐसे अनेक उल्लेख हैं जिनसे प्रकट है कि एक लोक से दूसरे लोक तक यात्रा करने की सुविधाएं थी, और कौन जाने अब भी वे यात्रा कर रहे हों। हमारे विमानों तथा अंतरिक्ष यानों की गति अत्यंत सीमित है, किंतु हम पहले ही देख चुके हैं कि कदम मुनि बाहर अंतरिक्ष में ऐसे विमान से यात्रा करते थे जो नगर जैसा था, और उन्होंने सभी लोगों की यात्रा की थी। वह ना तो सामान्य विमान था और ना वह यात्रा सामान्य अंतरिक्ष यात्रा थी। क्योंकि कदम मुनि अत्यंत शक्तिशाली योगी थे, अतः उनके ऐश्वर्य से स्वर्ग के निवासी ईर्ष्या करते थे। ओम अज्ञान तिमिरदस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षु नमृतम येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्ना मनोपिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमत भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाशादेष्टाने। जय श्री कृष्ण चैतन्ना प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं च नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं दीयत। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नष्ट प्रायशो भद्रेशु नित्यं भागवत सेवा भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्ट की। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठा भूतलेश गिरिराज स्वामी नाम। तो इस श्लोक में बताया गया है कि कदम मुनि जी के पास कितनी समृद्धि थी, उनका घर कितना वैभव था, उनमें सुख शांति के जितने भी साधन हो सकते हैं वहां पर थे। साधारणतः जो स्वर्गीय लोक हैं, हेवनली प्लैनेट्स हैं, वहां पर यहां से सुख सुविधाएं ज्यादा हैं। आजकल हम देखते हैं कि ये जो समय है ये भौतिकवाद का चल रहा है। टेक्नोलॉजी लोग समझते हैं कि उन्होंने पहली बार ये टेक्नोलॉजी को अपनाया है, उन्होंने पहली बार खोज की है। आज से 40-50 साल पहले आप देखते थे मोहल्ले में, किसी के सारे मोहल्ले में एक फोन होता था, तो पीपी कॉल होती तो लोग आने आते थे, और फोन की लाइन भी इतनी क्लियर नहीं होती थी। और किसी मोहल्ले में एक फोन लगा होता था तो ठीक है, बोलते सब मोहल्ले वाले वही नंबर देते थे उनको। आज इतना भौतिकवाद हो गया है कि किस हर एक के पास मोबाइल है, साधु के पास भी मोबाइल है, उसका काम नहीं चलता है। तो किसी का मोबाइल खराब हो जाए उसको चिंता हो जाती है, और सब तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, आईफोन आईपैड ये पैड वो पैड क्या क्या कुछ आ रहा है। और जो भी सारा संसार है केवल भौतिकवाद के पीछे भाग रहा है, और भौतिकवाद पीछे भागने से वो ये सोच रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। भगवान ने गीता के अंदर स्पष्ट बोला है जो विमूढ़ आत्मा होती है अहंकार के अंदर, वो ये सोचता है कि मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं और मैं ही करता हूं, और ये संसार में ऐसा ही चल रहा है आप देखते हैं। परंतु जितनी भी टेक्नोलॉजी है आज के युग में, ये हमारे जो वैदिक सभ्यता है, जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से वैदिक सभ्यता जो आजकल तो लुप्त हो गई है किस्म की, और उसके अंदर ये जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा एडवांस थी। यहां पर जिस व्यक्ति ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है उसका मेरे को नाम भूल गया है, उस अमेरिकन व्यक्ति का, जब भी उन्होंने जापान के ऊपर बॉम्ब गिराया था न्यूक्लियर बॉम्ब, और उसके अंदर टोटल का टोटल जापान तहस नहस हो गया था, मगर जब उसने उसको बनाया ही था, अभी उसको यूज नहीं किया था, उसने बनाने के बाद उसने बोला, क्या बोला उसने, यू कैन आप देख सकते हैं, इवन यूट्यूब के ऊपर भी डाला हुआ है सब लोगों ने, पर्टिकुलरली उनके, और उसने एक्सेप्ट किया है इस चीज को। जिस व्यक्ति ने ये आविष्कार बोलते हैं ना, इन क्या बोलते हैं, आविष्कार ही होगा ना, जिस व्यक्ति ने आविष्कार किया है आज की टेक्नोलॉजी में, वो आदमी इतना इंटेलिजेंट था, परंतु उसने किसको याद किया बनाने के बाद, उस बम को बनाने के बाद, न्यूक्लियर को उसको बनाने के बाद उसने किसको याद किया, भगवान कृष्ण को। वो बोलता है मैंने जो कुछ भी बना दिया है इससे ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी थी महाभारत में। वो बोले उसने लिखा हुआ है पूरा, उसने बताया है, बोलता जब मैंने ये चीज बनाई है तो मेरे को भगवद गीता के बस 11वां अध्याय का पूरा याद आ रहा है, और उसने उसको कोट किया, उसने एक्सेप्ट किया इस चीज को कि जो टेक्नोलॉजी महाभारत के अंदर है वो आज हमारे पास, वो टेक्नोलॉजी अभी तक हम कोसों दूर है उससे। विमान जब भी हिटलर ने जर्मन में, उन्होंने भी हमारी वैदिक संस्कृति से उठाया है, और केवल मंत्र से जिस न्यूक्लियर वेपन को, वो महाभारत में जो तीर होते थे, ये जैसे तो ये सोचते हैं कि जो तीर कमान है जैसे हमारे रामलीला में खेलते वैसे होंगे, वैसे नहीं थे। और आप देख सकते हैं कि वो टाइम पर कदम मुनि ने एक इतना बड़ा महल बना दिया और हवा में उड़ा दिया उसको, और एक लोक से दूसरे लोक में जाता था, और उस इतनी बड़ी एडवांसमेंट थी तभी, जो स्वर्गीय लोग हैं, स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता हैं, उनको भी कदम मुनि से ईर्ष्या होती थी। इतना सुख वैभव दिया कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति को। अब आप सोचेंगे भाई कर्दम मुनि इतने भक्त और ज्ञानी, और उनका उनके घर में भगवान ने स्वयं अवतार लिया, उनको क्या जरूरत थी अपनी पति को इतनी भौतिकवाद के सुख देने की। इसका भी बहुत बड़ा राज है। गृहस्थ एक आश्रम है, जैसे ब्रह्मचारी एक आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम में नियम पाले जाते हैं। जब भी वनप्रस्थ लेता है व्यक्ति तो उसके भी नियम है, जब भी संन्यास लेता है व्यक्ति तो उसके भी एक नियम है, तो जो गृहस्थ आश्रम है उसके भी कुछ नियम है, पत्नी के नियम और पति के नियम। प्रभुपाद जी ने बोला है, प्रभुपाद जी ने कहा है ग्रस्त ये नहीं है कि एक पति और पत्नी और बच्चे और ये चार दीवारी घर, बोले ये ग्रस्त नहीं है। ग्रस्त का अर्थ है पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, घर और बीच में भगवान कृष्ण, और उसके नियम पाले जाते हैं। एक बार कोई ब्रह्मचारी गया प्रभुपाद जी के पास, बोला मेरे को शादी करनी है, तो प्रभुपाद जी ने बोलता, कैन यू बाय फ्लैट फॉर योर वाइफ? सो ही लुक्ड एट प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि क्या तुम अपनी पत्नी को फ्लैट लेके दे सकते हो? तो उसने जब प्रभुपाद जी की तरफ देखा तो प्रभुपाद जी बोलते, यू कैन प्रोवाइड फैसिलिटी टू योर वाइफ, तुम अपनी पत्नी को देखभाल नहीं कर सकते हो, शादी के काबिल नहीं हो। शादी का अर्थ है, गृहस्थ का अर्थ है। प्रभुपाद जी ने एक और बात बोली, प्रभुपाद जी ने बोला, इट इज हस्बैंड ड्यूटी टू स्पीक स्वीट वर्ड्स टू द वाइफ टाइम टू टाइम एंड बाय गिफ्ट्स फॉर द वाइफ टाइम टू टाइम। कंफर्म्ड। सो उसका अर्थ प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो पति का धर्म है प्रेम पूर्वक पत्नी को रखे, उसके लिए उपहार, उसके लिए अच्छे शब्द, कुछ मीठे बोल बोले, और उस पत्नी की ड्यूटी है उस पत्नी को वापिस भगवान के धाम में लेके जाए, ये ड्यूटी है हस्बैंड की। और पत्नी की ड्यूटी क्या है गृहस्थ आश्रम में, कि वो पति की पूरे हिसाब से उसका उसको 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 उत्साहित करे भगवान की भक्ति करने के लिए, उसका सहयोग दे भक्ति करने के लिए। जो गृहस्थ को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, काम इसने इंद्रिय प्रीति लाभ हो जीवित जाता जीवस्य तत् जिज्ञासा नाथ जस्य करम भी, जीवन का उद्देश्य केवल इंद्रियां तृप्ति के लिए नहीं है। सो कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी को सब सुख वैभव दिए, मगर पत्नी ने पूर्ण ज्ञान से पूर्ण जब क्योंकि कपिल मुनि ने उनको पूर्ण ज्ञान दिया, और उसको तिनका भर भी संकोच नहीं हुआ उसको वैराग्य करने में। जो भी भक्ति करता है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रियोता जनति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, ज्ञान और वैराग्य, जब भी भक्ति करे ज्ञान और वैराग्य इमीडिएटली हो जाता है। ज्ञान और वैराग्य प्रमुख नहीं है भक्ति का, ये बाया प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट तो जो भक्ति का है वो भगवान कृष्ण की प्राप्ति, और ज्ञान कैसा है, भौतिक ज्ञान नहीं। आजकल देखिए ज्ञान क्या है, कोई कोई टेक्नोलॉजी में है, कोई साइंस में है, कोई कोई मेडिकल साइंस में चल रहा है, कोई बिजनेस में ज्ञान ले रहा है, और जिस जिस तरह जैसे जैसे सब दुनिया, वृंदावन में आप बैठे हैं तो वृंदावन में आपको इतना नहीं पता लगेगा, क्योंकि वृंदावन में आप उठेंगे सुबह मंगल आरती जाएंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, 64 माला करेंगे, 32 माला करेंगे, कहीं कीर्तन सुनने जाएंगे, कीर्तन में बैठेंगे, कहीं कथा में बैठेंगे, तब शाम हो जाएगी, थोड़ा सा प्रसाद पाया, भक्तों का संग किया, सो गए, सुबह फिर मंगल आरती उठ गए। ये तो वृंदावन का काम है। वृंदावन से बाहर जाइए तो भौतिकवाद है संसार। आप जाइए दिल्ली में, थोड़ा सा देखिए सब किस तरह भाग रहे हैं, एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। उनको बोलिए उद्देश्य क्या है उनका जीवन का। आप किसी को भी देखिए, कहीं भी जाइए आप, एक वृंदावन ही ऐसी जगह है, यहां पर एक उद्देश्य है। जो भी वृंदावन में आता है केवल एक ही उद्देश्य से आता है कि किसी ना किसी तरह भगवान के दर्शन डाले मैं पाऊं। वृंदावन के अंदर जो भी व्यक्ति भाग रहा है, कोई एक एक मंदिर से दूसरी, कोई इधर को जा रहा है, कोई बांके बिहारी मंदिर को जा रहा है, कोई राधा रामन जी के मंदिर को जा रहा है, कोई कृष्ण बलराम के मंदिर को आ रहा है, तो सबका उद्देश्य क्या है वृंदावन में। जितने भी भागम भागी है वृंदावन के, एक ही उद्देश्य कि कृष्ण है, गोल सबका कृष्ण है। भले वो पहली बार वृंदावन में आए, भले वो 10 बार वृंदावन में आए, भले वो वृंदावन में उसको वास मिले, वृंदावन में जो भाग दौड़ है वो केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए है, मगर वृंदावन से बाहर भाग दौड़ जो है वो क्या है? सिर्फ एक ही चीज के लिए। जिसके पास एक छोटी सी झोंपड़ी है वो यही प्रयत्न करता है किसी ना किसी तरह भगवान किसी देवी देवता का वो पाठ पूजा करेगा, कहीं भी जाएगा, किसी भी साधु के पास जाएगा, उसका यही उद्देश्य होगा किसी तरह मेरे पास तो एक छोटी सी झोंपड़ी है, बहुत गरीब हूं, क्या करूं भाई, थोड़ा सा एक कोई फ्लैट हो जाता तो भले स्टूडियो फ्लैट ही हो जाता तो बहुत अच्छा होता। जिसके पास स्टूडियो फ्लैट है वो बोलता है मेरे पास दो बेडरूम का हो जाए, जो दो बेडरूम वाला है बोलता है मेरे को एक छोटा सा तीन बेडरूम का फ्लैट, जो फ्लैट वाला है बोलता है मेरे पास घर हो जाए, जिसके पास घर होता है बोलता नहीं मेरा घर थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा भैव वाला बढ़िया कोठी हो जाए, कोठी वाला सोचता है मेरे पास एक फैक्ट्री हो जाए, वो फैक्ट्री वाला सोचता है बलिया मेरे के पास एक फैक्ट्री है, मेरे भाई के पास दो फैक्ट्री है, मेरे पास तीन हो जाए, सब जगह एक की तरफ भाग रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा ही भाग रहे हैं। कोई व्यक्ति था वो एक बार नाव पार करने लगा तो पढ़ा लिखा था तो नाव वाले को पूछता है, जब नदी पार कर रहा था तो नाव वाले को पूछता है अरे भैया तुम कभी यूनिवर्सिटी गए हो? बोलता नहीं साहब मैं तो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया। बोलता अरे तूने अपना 25% अपना जीवन खराब कर दिया, व्यर्थ कर दिया तुमने जीवन अपना। तो बेचारा अपनी नाव चला रहा है और भगवान का नाम जप कर रहा है, तो कृष्ण का राम का नाम ले रहा है बस। थोड़ी दूर आगे जाके फिर नाव वाला बोलता है अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं गए कभी स्कूल गए हो? बोला नहीं साहब मैं तो स्कूल भी कभी नहीं गया। तो बोला तुमने 50% अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, नष्ट कर दिया 50%। फिर बोलता पढ़ना लिखना आता है कुछ? बोलता नहीं साहब पढ़ना लिखना भी नहीं आता। ओह नहीं यूनिवर्सिटी गए नहीं स्कूल गए और ना तुम यहां पर पढ़ना लिखना भी आता, अरे तुमने 75% अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, पढ़ना लिखना भी नहीं आता तुमको, इसलिए हमारा देश बहुत पीछे है। तभी थोड़ी दूर गया तो नाव वाला बोलता भाई साहब आपको तैरना आता है क्या? बोलता नहीं। तो बोले आपने 100% आपका जीवन व्यर्थ है क्योंकि अभी नाव यह डूब रही है और आपको तैरना नहीं आता तो आपका जीवन नष्ट हो गया। तो जितना भी ज्ञान ले लो आप, जब तक ये संसार से व्यक्ति नहीं तैरने जानता तो उसका सब ज्ञान व्यर्थ है। मृत्यु सर हरस चाहम, मृत्यु है जो सब कुछ छीन लेगी। और व्यक्ति संग्रह कर रहा है वस्तुओं का किस चीज के लिए? कहीं भी देखिए आप, कहीं भी जाइए, हर एक व्यक्ति यही संग्रह कर रहा है किसी तरह मेरा धन के पीछे तो सब दुनिया भाग रही है। आप देखेंगे ना, हर एक व्यक्ति धन जरूरत है, धन के लिए ये नहीं बोलता हूं कि धन जो है धन के बगैर आपका आपको कई बार कई लोग एक कहावत है किसी शास्त्र में तो नहीं लिखी है पर बोला है भूखे पेट ना होए भजन गोपाला ले ले अपनी कंठी माला। भूखे पेट सत्य है मगर देने वाले भगवान हैं। हाथी खाए मन चींटी खाए कन, चींटी को भी हर रोज कन मिलता है खाने के लिए और हाथी 100 किलो खाता है उसको भी रोज मिलता है, भगवान देते हैं। वो बात अलग है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम हो जाए तो नहीं दे, कितना अनाज सड़ जाता है गोडाउन्स में पड़ा पड़ा सड़ जाता है। भगवान सब प्राणी को देते हैं, प्राणी के जीवन जन्म बाद में लेता है, पहले मां को दूध आ जाता है। हर एक प्राणी की व्यवस्था भगवान करते हैं परंतु हम क्या करते हैं, संग्रह करने की ट्राई करते हैं कि जितना भी संग्रह हो जाए। और किस चीज का संग्रह करता है? कोई बोलता है धन का संग्रह कर ले, कोई बोलता है गाड़ी का संग्रह कर ले, कोई बोलता है अपना कोई प्रॉपर्टीज का संग्रह कर ले, किसी ना किसी तरह उसको। और जब भी जाएंगे तो साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, जो चीज जाने वाली है उसका संग्रह करते नहीं हम। देखिए ना, अभी आप कोई कुंभ मेला में गए थे, कोई भी ये बार हाथ, कोई कुंभ मेला में गए थे? ठीक है, आज जब कुंभ मेला में गए होंगे यहां से, तो आपने थोड़ा सा देखा होगा भाई वहां पर कुंभ में जाना है, थोड़ा सा ठंडी होगी, शायद एक दो वस्त्र ले जाइए ठंडी के लिए। अच्छा, वहां नहाने कोई माता जी जाएंगी, बोलेंगी अच्छा नहाने के लिए भी वस्त्र चाहिए, कोई गमछा ले जाए साथ में, है ना? तो आप ये थोड़ा सा अपने लिए क्या चीज जो जरूरत है कुंभ मेला में, पता है भाई वहां पर रहने की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, तो थोड़ा सा उठा के लेके जाए। जब आप कोई यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या कई बार आप देखिए आप बद्रीनाथ जाएं, जब भी मई जून आएगा तो लोग कोई बद्रीनाथ जाएंगे तो क्या करेंगे, वो सबसे जरूरी चीज उठा के लेके जाएंगे, बोलेंगे भाई एक टोपी भी ले जाओ, एक ग्लव्स ले जाओ, साथ में एक जैकेट ले जाओ, और मोजे वगैरह सॉक्सेस वगैरह ले जाओ, थोड़े से चलने के लिए शू चाहिए, क्योंकि वहां पर चलेंगे, कोई गंगोत्री में जाएंगे या जमुनोत्री में चलना पड़ेगा भी, उसके लिए चलने के लिए थोड़े से चप्पल से चला नहीं जाएगा इतना, ये जरूरत की चीज है वहां पर। तो जब आप व्यक्ति जाता है तो अपनी जरूरत की जो बिल्कुल आवश्यक चीज है वो उसको लेके जाएगा, बाकी आलतू फालतू चीजों को नहीं लेके जाएगा व्यक्ति। और मृत्यु जब आएगी तो हमारे साथ कुछ जो वस्तु जाने वाली है, सब घड़ी है, ये रिंग्स है, सब उतार लेंगे, फैमिली वाले उतार लेंगे, बच्चे उतार लेंगे, ये उतार दो, पापा की घड़ी महंगी है ये ले लो, माताजी की चेन है बहुत, अरे 5 तोले की चेन है, छोटी बहू बोलती मैं लूंगी, बड़ी बहू बोलती अच्छा ठीक है तू ये ले ले, और मैं माताजी का झुमका, ये जो डायमंड का है, एक एक दो दो कैरेट का डायमंड का झुमका है, ये मेरे को दे देना, सब उतार लेंगे, सब कोई भी कोई चीज नहीं जाएगी। और जाएगी क्या चीज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संग्रह करना है, ये संग्रह करना है, क्या करेंगे, कृष्ण प्रेम, जिसको कृष्ण प्रेम होता है वो ये नहीं बोलता मेरे को कृष्ण प्रेम हो गया है। माधवेंद्रपुरी जी रो रहे थे, जब ये समाधि लेने लगे तो माधवेंद्रपुरी जी रोते हैं, अरे क्या हुआ, अरे मेरे को अभी कृष्ण प्रेम नहीं हुआ। अरे जिन्होंने कृष्ण प्रेम का बीज सब हमारे लिए डाल के चले गए, ये कृष्ण का प्रेम जो चेतना महाप्रभु ने जो वृक्ष है जिसको सींचा है भगवान ने, वो बनाया किसने, शुरुआत किसने की, चेतना महाप्रभु की जो 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 वृक्ष है चेतना महाप्रभु का, वो जो बीज तो मधवेंद्रपुरी जी ने ही डाला ना, उनके जो गुरु है ईश्वरपुरी, उनके गुरु मधवेंद्रपुरी जी, उन्होंने बीज डाला। और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति किस चीज से होती है, केवल महामंत्र का जप करे, कृष्ण का नाम ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 5 चीजें संग्रह कर लीजिए, जितनी 5 चीजें अपनी इस झोली में डाल लो वो समझो जाएंगी, वो कोई उसको छीन नहीं सकता, कोई बेटा नहीं छीन सकता, कोई आपका दुश्मन नहीं छीन सकता, कोई पड़ोसी नहीं छीन सकता इस चीज को। आपको देखकर उसके पास ये धन हो सकता है, देखिए कितना बढ़िया धन है, कभी आपके किसी के पास धन हो और पड़ोसी को ईर्ष्या हो और उस धन को निकाल ले आपकी पॉकेट से, आपकी जेब में वो धन कम हो जाता है। मगर ये एक ऐसा धन है जो आपके पास हो, कोई और देखे उस धन को, उसको देखने मात्र से उसके पास वो धन आ जाता है। ये शुद्ध भक्ति की पहचान है, बोला जिस व्यक्ति को देखने मात्र से आप में भक्ति आ जाए वो शुद्ध भक्त गिना जाता है। प्रभुपाद जी जहां पर गए प्रभुपाद जी को देखने मात्र से लोग भक्त बन गए। साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रद्धा मूर्ति सेवन पांच अंग हैं। पांच चीजों का संग्रह कर लिया जाए, इसका निचोड़ पांच चीजों का जो सबको निचोड़ है वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को किसी और तरह से नहीं पाया जा सकता। कौन सा श्लोक है? मंडलम दे लोकरंजनम। यहां पर भक्ति नहीं है भगवान की, वो तो केवल दिखावा है, उसमें कुछ कुछ ड्रामेबाजी है, कुछ मिलने वाला नहीं उसमें से। भगवान की प्राप्ति जो है, कृष्ण की जो प्राप्ति करनी, उसका एक ही साधन है, वो है भक्ति। और भक्ति करने का जो सबसे बढ़िया जो तरीका है वो भी एक ही साधन है, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब साधु का संग किया जाए, भागवत का श्रवण किया जाए, मथुरा का वास हो, ऊपर से भगवान का विग्रह हो, पांचों चीजें भगवान प्रभुपाद जी ने दे दी आपको। देखिए यहां पर बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है। ये बहुत बड़ा निचोड़ है, सब शास्त्रों का निचोड़ है। अभी आज मैं बात कर रहा था, नशिमंदन ने किसी मेरे को भक्त का नाम याद भूल गया, प्रभुपाद जी के डिसाइपल, हम बात कर रहे थे। जब मैं छोटा था तो शुरुआत में माता जी घर में गीता पढ़ती थी, दो तीन साल का बच्चा तीन साल का बोलना शुरू किया पढ़ना शुरू किया, माता जी गीता पढ़ती थी, हम भी गीता उठा के पढ़ते थे, ठाकुरों की पूजा होती थी, हम ठाकुरों उठा के ऐसा जमीन पे खेलते थे। भगवान की पूजा कृष्ण की पूजा शुरू की, मगर मैं यही सोचता था भगवान ने ये सब कुछ बनाया है जो दूसरे धर्म भी बनाए, कई कुछ और बनाया है, वो पड़पंच है, खराब है, अच्छे हैं, क्या है, मगर देखना है मेरे को एक बार क्या है इनमें। तो जब मैं कभी किसी जगह पर जाता था जस्ट देखने के लिए, तो मेरे पिताजी हमेशा एक बात बोलते थे, बोलते अरे तुम बेटा क्यों अपना समय वेस्ट करते हो, ये सब साधु वाधु लोगों को मिलकर यहां पर जाकर वहां पर जाकर मत जाओ। नहीं मैं देखना चाहता हूं है क्या। अरे बोले सबको छोड़ दो, सबका जो तत्व है वो भगवद गीता है, हमारे पिताजी ये बोलते थे हमको। फिर वो बोलते थे तू इतनी जगह किसी भी जगह पर चले जाओ, बोलता सब छोड़ दो, केवल भगवान नारायण, हमारे पिताजी नारायण की पूजा करते थे, और बोले भगवान नारायण है और सब कुछ कुछ सब कुछ छोड़ दो। अरे वाह, मगर हमको उनकी बात के ऊपर विश्वास नहीं होता था, विश्वास था मगर दृढ़ विश्वास नहीं होता था। और दृढ़ विश्वास जो है, फिर एक बार मैं कोई वहां पर एक बाबा, थोड़ा सा कुछ आपको नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, तो एक बाबा वो कोई कोई भभूति आसे निकाले, कुछ ये निकाले, कुछ शहद निकाले, वो निकाले वो निकाले, तो हम 10 साल के थे, तो मैंने पिताजी को बोला पिताजी वहां पर कोई नहीं, कोई नहीं बाहर ले जाइए, नहीं तो एक बार कहीं पर वो थोड़ा सा बंद कर लीजिए माता जी थोड़ी देर के लिए। तो एक बार हम जब 10 साल के थे तो कहीं कुछ वो भभूति निकल रही थी, शहर निकल रहा था, ये निकल रहा था, वो निकल रहा था, पिताजी को बोला पिताजी सब लोग देखने के लिए जा रहे हैं, हम भी देखना जाना चाहते हैं। तुम्हारे पिताजी ने एक बात बोली, बोले बेटा जाओ, परंतु तुमको एक बात बताता हूं, देख के आ जाना मगर प्रभावित मत होना। यह सब सिद्धियों का काम होता है, यह सब रिद्धियां सिद्धियां छोड़ो और केवल भगवत गीता का आश्रय ले लो। तो फिर भी हम गए देखने, मगर अपना पिताजी की बात को कभी भूले नहीं सारी लाइफ। और जब हमारा संबंध प्रभुपाद जी की पुस्तकों से हुआ, जब हमने पढ़ा तो हम अपने पिताजी को भी याद किया और प्रभुपाद जी का इतना हम आभारी हैं कि जो अनमोल रतन जो है भक्ति का, मनुष्यनाम सहस्य शु कश्चित यतति सिद्धते, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन मा बेति तत्वता। हजारों हजारों व्यक्तियों में से एक को ज्ञानी बनता है और हजारों हजारों ज्ञानियों में से एक को व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है। कृष्ण की भक्ति आप ये मत सोचिए कि ये कोई साधारण चीज है, कोई साधारण वस्तु है, ये बहुत अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ये तो कृपा है भगवान की, प्रभुपाद जी के कारण। मैं आपको एक और बात बताता हूं, एक बार किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा, किसी भक्त ने, कि प्रभुपाद जी जो चेतना महाप्रभु ने बोला, प्रीति आचे जात नगर आदि ग्राम सूत्र प्रचार होइवे मोरा नाम, कि जो चेतना महाप्रभु का नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, सब पृथ्वी में लोग प्रीति आचे नगर आदि ग्राम, नगर में गांव गांव में ये इसका होगा, तो क्या सारा संसार इसको अपना लेगा? क्या संसार का हरेक व्यक्ति इसको अपनाएगा? प्रभुपाद जी ने बोला नहीं। ब्रह्मांड कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड कोई भाग्यवान जीव होगा जो ये जो माला जप करेगा, जो साधु संग करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, ये सबका वश का काम नहीं है। प्रभुपाद ने तो एक और बात बताई, एक बार प्रभुपाद जी बोलते ये मैं मंदिर खोल रहा हूं, सब लोग मंदिर को ज्वाइन नहीं करेंगे, बहुत भाग्यवान लोग ज्वाइन करेंगे, बाकी तो स्कृतिवान आएंगे और दर्शन करके चले जाएंगे, मगर उनकी स्कृति होगी, उनमें कुछ ना कुछ भक्ति का आज नहीं तो कल को परसों उसका बीज पड़ेगा। स्कृतिवान चतुर्विधा भजन्ते मम जन स्कृतिनो अर्जुन, देखिए ना कितने स्कृतिवान सुबह से शाम तक आते हैं। उसका अर्थ यह नहीं है कि वो सब लोग भक्ति शुरू कर देंगे, हाँ कुछ ना कुछ तो हुआ उनको। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है, ईशांतंत गत पापम जनाना ना पुण्य कर्मण, तो ये द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते मम दृढ़ व्रता। कौन दृढ़ से डिटर्मिनेशन से भगवान कृष्ण की भक्ति कौन करता है? उन्होंने कहा वो व्यक्ति जिसने पुण्य कर्म किए, पिछले जन्मों में कोई पुण्य कर्म किए हैं और ये जन्म में भी पुण्य कर्म किए, और पुण्य कर्म करते करते उसके जो पाप थे वो नष्ट हो गए, पिछले जन्मों के पुण्य कर्म, ये जन्म के पुण्य कर्म, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसकी रिजल्ट से मेरी भक्ति उसने शुरू की, और फिर वो दृढ़ व्रता से, हे भगवान अब मैं आपकी भक्ति को छोड़कर और कुछ करना ही नहीं, मेरे को कुछ भी हो जाए मगर मैं आपका ही नाम जप करता रहूंगा, मार भी राख भी जो इच्छा तुम्हार, भले मेरे को मार भले मेरे को राख, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा। एक तो ऐसे हो गए भक्त, दूसरा किसी ने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ये गीता में ये कहा गया है कि वो व्यक्ति शुरू करता है, इसका मतलब क्या, हमारे में क्या क्वालिफिकेशन है? भक्ति की ये क्वालिफिकेशन है, वही भक्ति शुरू करते हैं जिन्होंने पुण्य कर्म किए पिछले जन्म में ये जन्म में, हमने भक्ति शुरू किया, हमारे में क्या क्वालिफिकेशन है? प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हारे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है,
तुम्हारी क्वालिफिकेशन केवल इतनी है, मैं जो तुमको बता रहा हूं वो तुम कर रहे हो। एक दूसरी क्वालिफिकेशन है भगवान कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की, जो महामंत्र जप कर रहे हैं हम। एक तो क्वालिटी, एक तो वो क्वालिटी होगी लोगों की जिन्होंने पुण्य कर्म किए पिछले जन्मों में, ये जन्म में उनके पाप नष्ट हो गए, उन्होंने भक्ति शुरू कर दी, किसी ना किसी तरह भक्त से संग हुआ और भक्ति शुरू हो गई साधु संघ से। एक और क्वालिफिकेशन है, वो क्या है? वो क्वालिफिकेशन ही है कि उसके पास को क्वालिफिकेशन है ही नहीं। अरे आप पूछेंगे वो कैसे होगा? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौरत विषय नमः। वो क्वालिफिकेशन ही है कि जो बिल्कुल ज्यादा डूब रहा है, जैसे कोई वो होता है ना लाइफ गार्ड, आप जाइए ना कोई समुद्र के तट के ऊपर या स्विमिंग पूल में, वहां पर लाइफ गार्ड बैठता है और जिस व्यक्ति को तैरना नहीं आता है ना, वो पानी में डूबता है ना जब भी, तो लाइफ गार्ड पहले उसको बचाता है, बोलता है इस आदमी को डूब रहा, ये आदमी तैर नहीं सकता है, ये डूब रहा है, पहले इसी को बचाओ। तो उसके पास कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, उसी को बचाता है पहले वो। और चैतन्य महाप्रभु भी जो पतित पावन, जो सबसे पतित है, उसको ही बचाते हैं। तो या तो हम बिल्कुल पतित होंगे या कोई पुण्य कर्म किए होंगे, मगर कुछ भी किया हो, सबसे बढ़िया भाग्य हमारा सबका, जो भी व्यक्ति है, भले उसके अंदर थोड़ी सी भक्ति है, भले ज्यादा है, भले कितनी ज्यादा है, या कितने भी अनर्थ हैं, या वो कुछ अपराध कर रहा है या नहीं कर रहा है, मगर अभी शुरू तो कर दिया ना, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं, धीरे 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 साधु संघ से चेतो दर्पण माजनम, जब वो माला जप करता रहेगा, तो जो मन का जो दर्पण है वो साफ हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जितने भी शास्त्र हैं, इसका जो तत् है, सब शास्त्रों का जो तत् है, बिल्कुल निचोड़ का निचोड़, वो है कृष्ण की प्राप्ति। और कृष्ण की प्राप्ति के लिए प्रभुपाद जी ने बोला कि मैंने जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं, एक बार उन्होंने प्रश्न किया अपने भक्तों से, भई आप बताइए मैंने क्यों लिखी पुस्तकें, कोई क्या, किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कुछ लहा कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो प्रभुपाद जी ने सब कुछ रिजेक्ट किया। किसी ने कहा प्रभुपाद जी और इन्हें गुरु परंपरा, फिर किसी ने कहा प्रभुपाद जी आपने बिल्कुल ऐसी की, ऐसी पुस्तकें लिख दी हैं, लोगों ने तोड़ मोड़ की है, आपने कुछ नहीं किया। मगर प्रभुपाद जी ने सब कुछ इंकार करने के बाद प्रभुपाद ने कहा, मैंने जो जितनी भी अपनी पुस्तकें लिखी हैं केवल एक ही काम के लिए लिखी है। वो क्यों लिखी हैं? आप इनको पढ़कर केवल एक काम करो, क्या करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तत् है, ये तत् है सब पुस्तकों का, प्रभुपाद जी का। और कृष्ण की जो प्राप्ति है, जो कृष्ण का प्रेम है, वो इसी से मिलेगा, ये कोई भिन्न नहीं है। मगर अभी हमको आभास नहीं हो रहा उसका। मैं कृष्ण का नाम जप करता हूं, मगर मेरे को जो गोलोक में कृष्ण बैठे हैं, ये जो नाम ले रहा हूं ये अलग, मगर जब ये महसूस होने लग जाएगा कि गोलोक कृष्ण और ये कृष्ण एक ही हैं, वही गोलोक कृष्ण जो बैठे हैं, जो राधा जी के गोलोक धाम में बैठे हैं, उसी कृष्ण, जब भी कृष्ण का नाम लिया तो गोलोक धाम के कृष्ण और ये कृष्ण में अंतर नहीं है। ये प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा दिया है हमको। मैं आपको पता नहीं ये घटना बताई कि नहीं बताई, वहां पर लंदन में एक भक्त हैं, वहां पर एक कोई मुसलमान लड़का था, तो किसी हिंदू लड़की से, गुजराती लड़की है वो, उनका मेल जोल हो गया। ये 25 साल पुरानी बात है। तो लड़की बोलती है कि मैं तो हिंदू घर की हूं और मेरे घर वाले तो आपको अपनाएंगे नहीं। और वो बोलता है भाई हाँ, और तुम हिंदू की घर हो और मेरे घर वाले भी आपको अपनाएंगे नहीं, अब क्या करें? बोले ऐसा करते हैं कि दोनों घर वालों को छोड़ते हैं, हम शादी कर लेते हैं, उसके अंदर हम रिलीजन की बात ही नहीं करेंगे। मैं इस्लाम की बात नहीं करूंगा, तुम हिंदू की बात नहीं करेंगे, हम केवल अपने घर में रहेंगे, घर गृहस्थी से प्रेम से जैसे हमारा है बस, और कुछ नहीं कर। बोल ठीक है। दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद उनके एक आध बच्चा हो गया, एक था पहले, हां बच्चा हो गया उनके। तो बच्चे का नाम हिंदू नाम के ऊपर रख दिया उसने। एक दिन लड़की बोलती है कि वहां पर एक टाउन का नाम है हैरो, हमारा जो टेंपल है वो है वॉटफोर्ड में, तो बोलती है कि वहां पर एक नाम हटा कोई प्रोग्राम है, मेरे को वहां पर जाना है। तो बोलते ठीक है, आपको मैंने शादी से पहले ही बोला था, विवाह से, कि कभी आपको कुछ करना है आपके अपने धर्म का तो आप करिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। तो उसकी पत्नी जो है, हमारे नाम हट प्रोग्राम में हरे कृष्णा का जो प्रोग्राम चलता था वहां पर, ये 25 साल पुरानी बात है, तो वहां पर वो आने लग गए। तो जब वो आने लग गए नाम हट प्रोग्राम में, वो उसका पति ड्राइव करता था, बोलता मेरे को अंदर नहीं जाने का, बाहर से ड्रॉप करके उसको चला जाता था, बाद में आता था 2 घंटे बाद उसको पिक करके ले जाता था। तो एक बार वहां पर प्रोग्राम थोड़ा सा लेट चल रहा था, वो गाड़ी में बैठा बैठा आधा घंटा पौना घंटा उसने जब इंतजार कर रहा था, तो उसकी वाइफ जब नहीं आई तो बोला चलो मैं अंदर जाके देखता हूं क्या बात है, आज लेट क्यों हो गई है। तो वो जो मुसलमान था वो अंदर चला गया, कोई दाढ़ी वाड़ी नहीं रखी थी, क्लीन शेव था जैसे नॉर्मल हिंदू रखते हैं। तो अंदर गया तो वहां पर सब लोग पंक्ति में बैठकर प्रसाद ले रहे थे। तो बोलता चल आया हूं, उसने देखा भाई प्रसाद है, अच्छा चल मैं भी बैठ जाता हूं। तो वहां पर उसने प्रसाद लेने के लिए बैठ गया। तो जब उसने प्रसाद लिया तो उसको प्रसाद बहुत अच्छा लगा। तो अगले हफ्ते उसकी पत्नी फिर आ रही थी प्रोग्राम पर, तो उसको ड्रॉप करके चला गया। जब बोलता भाई प्रसाद बहुत अच्छा था, अच्छा चलो मैं सुनने नहीं, मैं केवल प्रसाद खाने के लिए जाऊंगा। तो जब प्रोग्राम खत्म होने लगा, प्रसाद का टाइम आया, वो गया वहां पर प्रसाद खाने लग गया। तो 1-2 महीने उसने प्रसाद खाया। फिर एक दिन उसके मन में ये विचार आया, भाई मैं प्रसाद तो खाने जाता हूं, कुछ बोलती है देखो तो सही, वो बताते क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है। तो अपनी पत्नी को बोलता आज थोड़ा सा मैं अर्ली आ रहा हूं, ठीक है आ जाओ। थोड़ा सा अर्ली चला गया। जब वहां पर गया, जब उसने भगवद गीता का प्रवचन सुना, उसका मन होने लग गया। तो घर में उसने अपनी पत्नी की ऐसा गीता उठाए और धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया। प्रभुपाद जी का ऐसा कृपा हुआ कि दोनों धीरे धीरे वो दोनों 16 माला करने लग गए। 16 माला करते करते फिर उन्होंने दीक्षा ले लिया। अभी दोनों ने दीक्षा भी ले लिया, उनका उसका उनका जो लड़के का नाम है उसका नाम है गौरहरि, वेरी हम्बल, वेरी नाइस डिवोटी। तो जब दोनों ने दीक्षा ले लिया, देने के बाद अब उसका जो दादा था गौरहरि का, उस दादा के साथ उसका बहुत अच्छा संबंध था। भले वो मुसलमान था बट उसको वो बात कर सकता था अच्छी तरह से उसके साथ। तो उसके मन में विचार आया कि मैं अपने दादा के पास जाऊं, अब्बा की क्या जो भी कुछ बोलता होगा। तो एक दिन अपने पिताजी के घर गया और अपने ग्रैंडफादर को बोलता है कि आपसे कुछ बात करनी है मेरे को। बोले हाँ बताओ। बोला नहीं यहां पर नहीं बताऊंगा, आपके ऊपर कमरे में जाकर फिर बताऊंगा। ठीक है चलो। ऊपर गया लॉफ्ट रूम में, वहां जाकर उसने ऐसे एक गीता उठाई, बोलता मैं ना ये जो पुस्तक है भगवद गीता मैं रोज पढ़ता हूं, अभी बताया नहीं मैं दीक्षित हो गया हूं। बोला ये मैं पुस्तक है ये मैं रोज पढ़ता हूं, इसमें बहुत ज्ञान है भगवान के बारे में। जब उसने प्रभुपाद जी की पुस्तक अपने ग्रैंडफादर को दिखाई तो उसका ग्रैंडफादर उसको अब्बा बोलता है बेटा ठहर, तेरे को मैं भी कुछ दिखाता हूं। तो उसने अपना तकिया उठाया, उसमें से एक गीता उठाई, वो भी थी भगवद गीता आदि थी, बोलता तुम भी पढ़ते हो, मैं भी ये पढ़ता हूं, मगर मैं तेरे बाप को बता नहीं सकता हूं कि मैं गीता एज इट इज प्रभुपाद जी की गीता में पढ़ता हूं। तो लोग ऐसे भी हैं, छुप छुप कर भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें भी पढ़ते हैं। तो ये जो उपहार है प्रभुपाद जी ने हमको दिया है कृष्ण भक्ति का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसको जितना भी हम संग्रह कर लें, जितना भी कर सकते हैं वो कर लें, क्योंकि मरने के समय हमारे साथ वो जाने वाला है। और इसको 64 माला करो, भले 100 माला करो, जितनी भी कर सकते हैं, सबसे यही इसको संग्रह करते जाइए और ये साथ में जाएगी हमारे। तो यहां पर थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की, कोई भक्त कोई टिप्पणी करना चाहता हो या कोई प्रश्न हो? यस, एक तो मार भी राख भी, जो इच्छा तुम्हार, भगवान भले मेरे को मारो भले मेरे को राखो, जिस हाल में भी रखो। इसलिए भगवान ने गीता में बता दिया, मात्र स्पर्श कौन थे शीतोष आगमा पाइनता संस्व भारत, भगवान ने कहा है सुख और दुख ये तो सर्दी गर्मी की तरह आते रहेंगे, अर्जुन इसको टॉलरेट करना सीखो। भगवान ने ये नहीं कहा इसका समाधान तो हो ही नहीं सकता। तो यही भक्तिनो ठाकुर जी ने बताया, भक्तिनो ठाकुर जी की हेल्थ भी अच्छी नहीं होती थी, उनकी हेल्थ में बहुत समस्या रहती थी। तो कभी हेल्थ में कभी वेल्थ में ये चीजों की समस्याएं चलती रहेंगी, मानसिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं, धन की समस्याएं, परिवार की समस्याएं, ये समस्याएं चलती रहेंगी, ये कभी रुकने वाली नहीं। सो ये समस्या से निकलते निकलते केवल बस एक ही चीज है, भाई जैसा भी है आज ये समस्या है, आज कोई मानसिक हमारे हमको कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, कब कोई परिवार का कोई सदस्य डिस्टर्ब कर देगा, कब धन डिस्टर्ब कर देगा, कभी कुछ की कोई ना कोई ये समस्या ये चलती रहेंगी। ये समस्याओं को बस भगवान कृष्ण का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये संग्रह करना है। पारिवारिक समस्याएं, धन की समस्याएं चलने दो, जाती है आती जाए, आती आती जाए, जाती है जाती जाए, क्या करेंगे। ये देखिए बारिश आ रही है, कोई बात नहीं, आई है अब चली जाएगी, कल फिर धूप आएगी वो चली जाएगी, सर्दी आएगी वो चली जाएगी, अरे भैया ये ही जाएगा साथ में, वो अभी चली जाएगी ये साथ में जाएगा। थैंक यू, हरे कृष्ण शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।